आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मस्कत में ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक के साथ बातचीत करेंगे। भारत और ओमान जामे इक्तिसादी साझेदारी समझौते पर दस्तखत करेंगे। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर बहस मुकम्मल हो गई है। ज़राअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान आज बहस का जवाब देंगे। सरकार ने कहा है कि ओटीटी के प्रोग्राम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के दायरे इख्तियार से बाहर रहेंगे। दिल्ली सरकार कौमी राजधानी में फजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए आज से पीयूसी नहीं तो ईंधन भी नहीं जाब्ते को सख्ती के साथ नाफिज करेगी। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा T20 मैच कल रात लखनऊ में बहुत ज्यादा कोहरे की वजह से तर्क कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में ओमान के दो दिन के दौरे पर कल शाम मस्कत पहुंचे। जनाब मोदी उर्दुन और इथियोपिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद ओमान गए हैं। ओमान के नायब वजीर आजम और दिफाई उमूर के वजीर सैयद शहाब बिन तारिक साइद ने मस्कत हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में भारत ओमान इश्तराक को मुस्तहकम बनाने और कलीदी साझेदारी को आगे बढ़ाने के मामले पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सल्तनत ओमान के सरबराह ममलिकत सुल्तान हैसम बिन तारिक की दावत पर दोस्त मुल्क के दौरे पर गए हैं। जनाब मोदी आज ओमान के सुल्तान के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मुल्क आजाद तिजारत के समझौते जामे इक्तिसादी साझेदारी माहदे पर दस्तखत करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और ओमान के उनके हम मनसब कैसल यूसुफ इस समझौते पर दस्तखत करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान भी मौजूद रहेंगे। इधर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ओमान पायदार दोस्ती और भारत के साथ गहरे तारीखी रिश्तों की सरजमीन है। वजीर आजम ने कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक के नए रास्ते तलाश करने और साझेदारी को नई रफ्तार देने का मौका मिलेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
मस्कत में होटल पहुंचने के बाद भारतीय बरादरी ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया।
प्रेसिडेंट राकेश शाह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशल क्लब का ऐसे सोहार से मोदी जी के द्वारा जो यहाँ पे स्थापित किया गया इंडो ओमान रिलेशन का वो मजबूत होते और हम लोग देखना चाहते हैं।
अपने दो रोजा दौरे के दौरान ओमान के सुल्तान से उनके महल में मुलाकात के अलावा वजीर आजम एक कारोबारी फोरम में दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। वजीर आजम तलबा और भारतीय बरादरी के लोगों से बातचीत भी करेंगे। दिलचस्प बात है कि ओमान में भारतीय तलबा अपना ज़हनी तनाव खत्म करने के लिए वजीर आजम की परीक्षा पे चर्चा भी सुनते हैं। भारत और ओमान इस साल अपने सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस लिहाज से ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। मस्कत से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
देही तरक्की, ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर बहस का जवाब देंगे। मस्कूरा बिल पर बहस मुकम्मल करने के लिए लोकसभा की कार्रवाई कल रात देर गए तक जारी रही। ये बिल 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट 2005 की जगह लेगा। मस्कूरा बिल में 2047 तक विकसित भारत के कौमी नजरिए के ऐन मुताबिक एक देही तरक्याती फ्रेमवर्क कायम करने की बात की गई है। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश करते हुए जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मस्कूरा बिल से गांवों की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस बिल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी में इजाफा करके इसे 125 दिन किए जाने की तजवीज रखी गई है।
100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। न केवल गरीब का कल्याण, गांव का संपूर्ण विकास जो महात्मा गांधी कहते थे, एक संपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है।
इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर मम्लिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है के ओटीटी प्रोग्राम बदस्तूर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी के दायरे इख्तियार से बाहर रहेंगे। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में डॉ. मुरुगन ने कहा कि 2021 के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतालिका रहनुमा खतूत और डिजिटल मीडिया के अखलाकियात से मुतालिक जाब्तों के तीसरे बाब की दफ़ात के तहत ओटीटी प्रोग्राम मुनज़बित किए जाते हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अखलाकियात से मुतालिक जाब्तों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी है कि वो ऐसा मवाद दिखाने से गुरेज करें जो कानून की रूह से ममनू है, और साथ ही वो जाब्तों के रहनुमा उसूलों के मुताबिक उम्र के एतबार से प्रोग्रामों की जुमराबंदी भी करें। लोकसभा के आज के कामकाज में दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में फजाई आलूदगी पर बहस शामिल है। ये बहस जाब्ता नंबर 193 के तहत कराई जाएगी। उधर राज्यसभा में मरकजी वजीर डॉ. जितेंद्र सिंह भारत की काया पलट के लिए एटमी तवानाई को भरपूर अंदाज से बरूएकार लाने और इसके फरोग से मुतालिक बिल 2025 को गौरखौस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा ये बिल कुछ तरामीम के साथ मंजूर कर चुकी है। मजकूरा बिल में एटमी तवानाई इंजरबाती बोर्ड तश्कील दिए जाने और एटमी तवानाई से मुतालिक सलाहकार कौंसिल के कयाम की बात कही गई है। मस्कूरा बिल के तहत बोर्ड को किसी भी तरह के ताबकार मादे तैयार करने, इनके इस्तेमाल, बरामद, दरामद, ट्रांसपोर्ट या मुंतकली और ताबकारी पैदा करने वाले साजो सामान को मुनज़बित करने का इख्तियार होगा। एक मुल्क एक इंतखाब बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग कल नई दिल्ली में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट पीपी चौधरी के जेर क्यादत मुनक्किद हुई। ये कमेटी आईन के 129वें तरमीमी बिल 2024 और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 का जायजा ले रही है। बैन अलावामी मालियाती फंड आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग एडिटर गीता गोपीनाथ और वजीर आजम के इक्तसादी मुशावरत से मुतालिक कौंसिल के मेंबर संजीव सानियाल ने भी इस मीटिंग में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली सरकार कौमी राजधानी में फजाई आलूदगी की बिगड़ती हुई सूरत हाल से निमटने की खातिर कसीर रुखी मुहिम में तेजी लाते हुए आज से पीयूसी नहीं तो ईंधन भी नहीं जाब्ते को सख्ती के साथ नाफिज करने का सिलसिला शुरू कर रही है। दिल्ली के माहौलियात के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने पहले दिन से ही इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की खातिर मुतालिका एजेंसियों, पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और पुलिस को सख्त हिदायत जारी की हैं। मजकूरा मंसूबे के तहत पूरी दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर उन गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास दुरुस्त पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसके साथ साथ दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गैर BS6 गाड़ियों को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी।
PUCC सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया है। आप सबके पास अपना PUCC कम्प्लायंट गाड़ी का होना चाहिए। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं वह भी क्लीन फ्यूल की होनी चाहिए। हमारा आग्रह है कि दिल्ली के बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो दिल्ली में आके पोल्यूशन ना फैलाएं। इसलिए फैसला लिया गया है कि जब तक ग्रैप लगा हुआ है भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियां दिल्ली में अलाउड नहीं होंगी जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं।
दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में हवा की क्वालिटी अब भी बहुत खराब के जुमरे में है। फजाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी का औसत इशारिया आज सुबह 6 बजे 356 रिकॉर्ड किया गया। गुजरात में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी तफसीली नजरसानी SIR का अमल मुकम्मल होने के करीब है। वोटर फहरिस्तों का मुसविदा कल शाया किया जाएगा। रियासत में SIR की यह मुहिम 27 अक्टूबर को शुरू हुई थी और इसके तहत तस्दीक का मरहला कामयाबी के साथ पूरा हो गया है। सभी 33 जिलों और 182 असेंबली हलकों में तस्दीक का काम 100% मुकम्मल होने की इत्तला मिली है। गुजरात के आला चुनाव अफसर ने कहा है कि कल वोटर फहरिस्तों का मुसविदा शाया होने के बाद से अगले महीने की 18 तारीख तक दावे और एतराजात दाखिल किए जा सकेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
गुजरात में जाती मालूमात से मुतालिक 5,08,00,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए थे जिनमें से 4,34,00,000 फॉर्म्स रायदेहधान ने जमा करा दिए हैं। तफसीली अमल के दौरान हुकाम ने 18,00,000 से ज्यादा ऐसे रायदेहंदगान का पता लगाया है जिनकी मौत हो चुकी है जबकि 9,60,000 रायदेहंदगान मौजूद नहीं थे। اس کے علاوہ تقریباً 40 لاکھ ایسے ووٹرز کا پتہ لگایا گیا ہے جو مستقل طور پر دیگر مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 3,80,000 ڈپلیکیٹ معاملات کا بھی پتہ لگایا گیا اور چناؤ فہرستوں کو درست کرنے کی خاطر ایسے ناموں کو ہٹانے کا عمل شروع کیا گیا ہے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
روایتی طریقہ علاج سے متعلق عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او کی دوسری عالمی سربراہ کانفرنس کا کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں آغاز ہوا. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے روایتی طریقہ علاج میں بھارت کے طویل تجربے پر روشنی ڈالی اور تحقیق، کوالٹی معیارات اور عالمی تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اشتراک جس کا آغاز 2016 میں ہوا تھا عالمی سطح پر روایتی طریقہ علاج کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل کی نمائندگی کرتا ہے.
بھارت کے آدرنیہ پردھان منتری نریندر مودی جی کے کشل نیتروتو میں آیوش منترالے اور ڈبلیو ایچ او کے بیچ سہیوگ 2016 سے شروع ہوا تھا. اس کا ایک بڑا نتیجہ 2024 میں دلی میں آئی سی ڈی 11 ماڈیول 2 کا لانچ تھا جو آیوروید، سدھ اور یونانی بیماری کے کوڈ کو گلوبل ہیلتھ کلاسیفیکیشن میں جوڑتا ہے.
آیوش کے سیکرٹری ویدیہ راجیش کٹیچا نے کہا ہے کہ روایتی طریقہ علاج سے متعلق عالمی صحت تنظیم کی دوسری عالمی سربراہ کانفرنس میں ڈبلیو ایچ او کے 100 سے زیادہ رکن ممالک کے تقریباً 25 سے زیادہ وزراء صحت شرکت کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گے. روایتی طریقہ علاج کو عالمی سطح پر فروغ دینے میں بھارت کے قائدانہ رول کو اجاگر کرتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے کہا کہ بھارت نے روایتی طریقہ علاج کے لیے انضباطی فریم ورک تیار کرنے میں شراکت دار ملکوں کو اپنی مہارت سے نوازا ہے، نیز صلاحیت سازی، تعلیم اور تحقیق میں تعاون پیش کیا ہے.
دنیا بھر سے 100 سے زیادہ دیشوں کے پارٹیسپیشن ہے. اس سمٹ کا جو ادیش ہے وہ ریسٹورنگ بیلنس کر کے، تو ریسٹورنگ بیلنس مطلب ہم لوگ مل کر کے ٹریڈیشنل میڈیسن کے مادھیم سے کیسے گلوبل ہیلتھ پر، سواستھیہ کے بارے میں ہم امپیکٹ کر سکتے ہیں، پبلک ہیلتھ پہ جا سکتے ہیں، کیسے ایویڈنس جنریشن کر سکتے ہیں، کیسے کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں، کیسے ریگولیٹری میکینزم بنا سکتے ہیں، اس پر منتھن ہو رہا ہے اگلے 3 دن کے لیے. اور 19 تاریخ کو مانی پردھان منتری جی کے کنکلوڈنگ سیشن میں پدھارنے والے ہیں مارگدرشن کے لیے.
بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان چوتھا T20 کرکٹ میچ کل رات بہت زیادہ کوہرے کی وجہ سے ترک کر دیا گیا. یہ میچ لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں کھیلا جانا تھا. کئی بار معائنہ کرنے کے بعد امپائروں نے یہ میچ ترک کرنے کا فیصلہ کیا. اس طرح 5 میچوں کی سیریز میں بھارت کو بدستور 2-1 کی سبقت حاصل ہے. سیریز کا 5واں اور آخری میچ کل احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
شکریہ شگفتہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے ایتھیوپیا دورے سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے. اس خبر کی سرخی ہے، وزیراعظم مودی کو ایتھیوپیا کا سب سے بڑا اعزاز. وزیراعظم نے شراکت داری کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے عزم کا اظہار کیا. اخبارات نے دلی میں منعقد انڈیا اکنامک کانکلیو میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ بھارت کے کاروباری شعبے کے دم پر آئندہ برسوں میں ایک بار پھر عالمی تجارت میں 25% حصے داری ممکن ہے. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد کے اس بیان کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ آدھار ڈیٹا کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے.
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج مسقط میں عمان کے سلطان حیثم بن طارق کے ساتھ بات چیت کریں گے. بھارت اور عمان جامع اقتصادی ساجھیداری سمجھوتے پر دستخط کریں گے. لوک سبھا میں وکست بھارت جی رام جی بل 2025 پر بحث مکمل ہو گئی ہے. زراعت اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج بحث کا جواب دیں گے. سرکار نے کہا ہے کہ او ٹی ٹی کے پروگرام سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن کے دائرہ اختیار سے باہر رہیں گے. دلی سرکار قومی راجدھانی میں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے آج سے پی یو سی نہیں تو ایندھن بھی نہیں ضابطے کو سختی کے ساتھ نافذ کرے گی. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان چوتھا T20 میچ کل رات لکھنؤ میں بہت زیادہ کوہرے کی وجہ سے ترک کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.